एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम मनोविज्ञान की दुनिया के एक बहुत बहुत ही चर्चित और हां विवादास्पद नाम सिगमंड फ्रॉयड, उनके विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं। लेकिन ये सफर हम अकेले नहीं करेंगे। हमारे गाइड होंगे एंथनी स्टोर। वो एक ब्रिटिश मनोचिकित्सक थे जिन्होंने फ्रॉयड पर काफी कह सकते हैं संतुलित और आलोचनात्मक नजरिए से लिखा है। तो हम स्टोर के विश्लेषण के आधार पर फ्रॉयड को समझने की कोशिश करेंगे आज।
बिल्कुल, और ये सवाल मन में आता भी है ना कि भाई आज फ्रॉयड के इतने साल बाद उन पर बात क्यों करें।
हाँ, क्यों जरूरी है?
शायद इसलिए क्योंकि देखिए, चाहे हम माने या ना माने, फ्रॉयड के विचारों ने हमारे सोचने के तरीके पर, हमारी संस्कृति पर, हम खुद को कैसे समझते हैं, इस पर एक गहरी छाप छोड़ी है।
ये तो है।
हाँ, पर ये भी सच है कि साइंस आगे बढ़ी है, उनके कई सिद्धांत अब मतलब उतने मान्य नहीं रहे, गंभीर सवाल उठे हैं।
सही।
और यहीं पर एंथनी स्टोर का महत्व आता है। वो न तो फ्रॉयड के फैन थे न दुश्मन। वो हमें एक बैलेंस्ड नजरिया देते हैं, फ्रॉयड की विरासत को समझने में मदद करते हैं।
तो थोड़ा एंथनी स्टोर के बारे में जान ले पहले। 1920 में जन्मे, 2001 में उनका देहांत हुआ।
हाँ,
वो सिर्फ कोई किताबी कीड़े नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो एक अनुभवी मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक थे। ऑक्सफर्ड में पढ़ाया, रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट के फेलो रहे। मतलब उनका काम सिर्फ थ्योरी तक नहीं था।
हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है, उनका जो दशकों का क्लिनिकल अनुभव था ना, उसने उन्हें फ्रॉयड के आइडियाज को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में, मतलब मरीजों के साथ काम करते हुए परखने का मौका दिया।
अच्छा,
इसीलिए उनका नजरिया खास है। वो फ्रॉयड के कट्टर समर्थक भी नहीं थे और न ही उनके घोर आलोचक। उनकी खूबी थी कि वो मुश्किल साइकोलॉजिकल बातों को भी आम लोगों के लिए साफ सरल भाषा में समझा पाती थी। उनकी दूसरी किताबें भी हैं, जैसे सॉलिट्यूड है, म्यूजिक इन द माइंड। ये दिखाती हैं कि वो इंसानी मन को कितनी गहराई से समझती थीं।
मतलब स्टोर ऐसे थे कि फ्रॉयड की काबिलियत को मानते थे, लेकिन जहां कमियां थी या गलतियां थी, उन्हें भी बताने से हिचकिचाते नहीं थे।
बिल्कुल।
और फ्रॉयड जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिनका इतना असर रहा है पर जो इतने विवादास्पद भी हैं, उनको समझने के लिए शायद ऐसा ही बैलेंस्ड नजरिया सबसे सही है ना?
सही बात है। अब अगर हम स्टोर की फ्रॉयड पर लिखी किताबों के मकसद को देखें तो वो क्या था? बेसिकली ये किताबें फ्रॉयड की जिंदगी, उनके सिद्धांत और उनका जो असर रहा उसका एक क्रिटिकल मूल्यांकन करती हैं। स्टोर का लक्ष्य था, जैसे वो खुद कहते हैं, फ्रॉयड के काम में से गेहूं को भूसे से अलग करना।
अच्छा, गेहूं को भूसे से मतलब?
मतलब उन आइडियाज को पहचानना जिनमें आज भी दम है, जिनमें कुछ बात है, और उन्हें उन दावों से अलग करना जिनका कोई ठोस आधार नहीं मिलता आज के समय में।
ये दिलचस्प है। और स्टोर का एक मुख्य तर्क ये भी है कि फ्रॉयड को सिर्फ एक साइंटिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए कि भाई हर थ्योरी लैब में प्रूव हो सके।
हाँ, क्योंकि सच तो यही है कि उनकी कई थ्योरीज इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
लेकिन स्टोर उन्हें फिर क्या मानते हैं?
वो उन्हें मानव मन का एक एक पायनियर, एक अग्रणी खोजी मानते हैं। फ्रॉयड ने हमारी जो अंदरूनी दुनिया है, हमारे दुख है, हमारा व्यवहार है, उसके पीछे की ताकतों के बारे में सोचने के बिल्कुल नए रास्ते खोले।
तो स्टोर का कहना है कि फ्रॉयड को पूरी तरह खारिज कर देना भी गलत है।
हाँ, उतना ही गलत जितना उनके हर विचार को आंख बंद करके मान लेना। उनकी सबसे बड़ी देन शायद वो है, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की ताकत, और हमारी जो प्रेरणाएं हैं, मोटिवेशंस हैं, वो कितनी जटिल है ये उन्होंने सामने रखा। तो अपनी किताबों में स्टोर क्या करते हैं, वो फ्रॉयड की पर्सनल लाइफ, उनका जमाना कैसा था, उनके सिद्धांत कैसे धीरे धीरे बने, जैसे अचेतन, सपने, सेक्सुअलिटी, थेरेपी, संस्कृति पर उनके विचार, इन सब पर एक एक करके बात करते हैं और फिर आज की जो समझ है उसकी रोशनी में उनका मूल्यांकन करते हैं।
चलिए तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। स्टोर के विश्लेषण के कुछ खास हिस्सों को देखते हैं। वो फ्रॉयड के शुरुआती जीवन और उन पर पड़े प्रभावों से शुरू करते हैं, है ना?
हाँ, फ्रॉयड का जन्म 19वीं सदी के वियना में हुआ। उनका यहूदी होना, उस समय यूरोप में, खासकर वियना में, यहूदी विरोध बढ़ रहा था।
अच्छा, एंटीसेमिटिज्म।
हाँ, फिर उनकी मेडिकल ट्रेनिंग न्यूरोलॉजी में और वियना का जो पूरा बौद्धिक माहौल था, स्टोर कहती हैं कि इन सब चीज़ों ने फ्रॉयड के विचारों को एक शक्ल दी, जैसे सेक्सुअलिटी पर उनका इतना जोर देना या बड़े बड़े सिद्धांत बनाने की उनकी आदत, ये उस जमाने की सोच का भी हिस्सा थी।
और उनका न्यूरोलॉजी से साइकोलॉजी की तरफ आना,
ये कैसे हुआ?
वो भी एक दिलचस्प मोड़ था। ये खासकर हिस्टीरिया के मरीजों के साथ काम करने से शुरू हुआ, जैसे वो अन्ना ओ का मशहूर केस है जो उन्होंने जोसेफ ब्रॉयर के साथ किया था।
हाँ, सुना है उसके बारे में।
वहीं से उनके सबसे क्रांतिकारी विचार की नींव पड़ी, यानी अचेतन मन की खोज। स्टोर इसे डायनामिक अनकॉन्शियस कहती है।
डायनामिक अनकॉन्शियस मतलब?
मतलब ये कि अचेतन सिर्फ कोई भूली बिसरी यादों का कबाड़ खाना नहीं है, बल्कि उसमें दबी हुई इच्छाएं हैं, दर्दनाक यादें हैं, आदिम आवेग हैं, और ये सब लगातार एक्टिवली हमारे होश वाले विचारों और हमारे व्यवहार पर असर डालते रहते हैं।
ये तो उस समय की सोच के बिल्कुल उलट था कि इंसान तो तर्क से चलता है। फ्रॉइड का वो फेमस कोट भी तो है, अहम अपने ही घर का मालिक नहीं है।
बिल्कुल, सीधी चोट थी उस धारणा पर।
लेकिन स्टोर सबूतों के बारे में क्या कहते हैं? फ्रॉइड ने क्या सबूत दिया अचेतन के?
स्टोर बताती हैं कि फ्रॉइड ने जुबान फिसलने को, जिसे फ्रॉइडियन स्लिप कहते हैं ना,
हाँ हाँ, जब कुछ और कहना चाहे और मुंह से कुछ और निकल जाए,
हाँ, जो छिपी हुई बात बता देता है, उसे सपनों को और दमन यानी रिप्रेशन को, मतलब जो विचार हमें पसंद नहीं उन्हें चेतना से बाहर धकेलने की प्रक्रिया, इन सबको अचेतन के सबूत की तरह देखा।
और वो अन्ना ओ का केस?
हाँ, बर्था पैपेनहेम, वो केस बहुत अहम था। उसी से टॉकिंग क्योर यानी बातचीत से इलाज का आइडिया निकला। लेकिन यहाँ भी स्टोर आलोचनात्मक हैं। वो बताती हैं कि इस केस की रिपोर्टिंग पूरी नहीं थी और फ्रॉइड ने कई बार तथ्यों पर अपनी थ्योरी को ज्यादा हावी होने दिया। तो सबूत थे पर उनकी अपनी सीमाएं थीं।
इसके बाद स्टोर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के विकास पर आते हैं। फ्रॉइड का मॉडल भी तो बदला था समय के साथ।
हाँ बिल्कुल, शुरू में मन के हिस्से थे चेतन, पूर्व चेतन, अचेतन, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। बाद में उन्होंने स्ट्रक्चरल मॉडल दिया, इड, ईगो और सुपर ईगो।
हाँ, ये इड, ईगो, सुपर ईगो बहुत सुना है। स्टोर इन्हें कैसे समझाते हैं, आसान शब्दों में?
हाँ, स्टोर इन्हें काफी सरल तरीके से बताती हैं। इड जो है वो हमारे मन का वो बिल्कुल आदिम बच्चा जैसा हिस्सा है, जो बस अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है फौरन, नतीजों की परवाह नहीं। इसे सुख सिद्धांत या प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं।
ओके।
ईगो जो है वो हमारा तार्किक हिस्सा है, जो असल दुनिया की सच्चाइयों को समझता है। ये इड की जिद, बाहर की दुनिया की रुकावटें और सुपर ईगो के नैतिक दबावों के बीच एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये वास्तविकता सिद्धांत यानी रियलिटी प्रिंसिपल पर चलता है।
और सुपर ईगो?
सुपर ईगो हमारी नैतिकता की आवाज है, हमारा जमीर, जो हमने अपने माँ बाप से, समाज से सीखा है, सही गलत का एहसास, और यही हमें गिल्ट यानी अपराध बोध महसूस कराता है।
तो फ्रॉइड के हिसाब से हमारी पूरी मेंटल लाइफ इन तीनों के बीच एक लगातार लड़ाई है।
बिल्कुल, एक कांस्टेंट स्ट्रगल। और इसी स्ट्रगल को समझने के लिए फ्रॉइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स, रिप्रेशन और डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा तंत्र जैसी धारणाएं बनाई।
डिफेंस मैकेनिज्म जैसे?
जैसे बहाने बनाना, रैशनलाइजेशन, या अपनी कमियां दूसरों में देखना, प्रोजेक्शन। ये वो अनजाने तरीके हैं जिनसे हमारा ईगो चिंता से बचने की कोशिश करता है। लेकिन स्टोर ये भी साफ करती हैं कि फ्रॉइड के ये सिद्धांत समय के साथ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए और इनके कई हिस्सों के लिए ठोस वैज्ञानिक सबूत मिलना मुश्किल है।
अब आते हैं फ्रॉइड के शायद सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया पर, लैंगिकता और मानव विकास। इसे स्टोर कैसे देखती हैं? फ्रॉइड का लिबिडो का क्या मतलब था असल में?
स्टोर समझाती हैं कि फ्रॉइड ने लिबिडो को सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं रखा था, उन्होंने इसे एक बुनियादी जीवन ऊर्जा माना, एक तरह की मेंटल एनर्जी जो जन्म से ही मौजूद होती है।
अच्छा।
और उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा बचपन में कुछ खास स्टेजेस से गुजरती हैं, जिन्हें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कहा, ओरल, एनल, फैलिक।
हाँ, ये नाम सुने हैं। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स?
वो इसी फैलिक स्टेज से जुड़ा है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में माँ के प्रति आकर्षण, पिता से प्रतिद्वंदिता, और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स लड़कियों में।
लेकिन स्टोर इन विचारों को कैसे आंकती हैं? क्या वो इन्हें पूरी तरह खारिज कर देती
हैं? नहीं, पूरी तरह नहीं। स्टोर मानती हैं कि बचपन के रिश्तों और सेक्सुअलिटी के महत्व को पहचानना ये फ्रॉइड की बहुत बड़ी देन थी। आज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी इसे मानती है।
लेकिन
वो ये भी जोर देकर कहती हैं कि फ्रॉइड के ये जो खास चरण हैं और ओडिपस कॉम्प्लेक्स का जो ढांचा है, उसके लिए वैज्ञानिक सबूत बहुत कम है। उस पर कल्चरल बायस का आरोप है कि ये विचार वियना के समाज पर आधारित थे, और जेंडर बायस के भी आरोप हैं। तो यहाँ स्टोर का वो बैलेंस नज़रिया फिर दिखता है, महत्व को स्वीकारना पर कमियों को भी उजागर करना।
ठीक है, और सपनों के बारे में फ्रॉयड के विचार, वो तो अपनी किताब सपनों की व्याख्या को मास्टरपीस मानते थे, स्टोर इसे कितना अहम मानते हैं?
फ्रॉयड तो खुद कहते थे कि सपने अचेतन तक पहुंचने का शाही रास्ता है, रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। स्टार बताती हैं कि फ्रॉयड का मानना था कि सपने बेकार की चीज नहीं है, उनमें हमारी दबी हुई इच्छाएं छिपी होती हैं। उन्होंने सपने के दो लेवल बताए, प्रकट सामग्री यानी जो सपना हमें याद रहता है, और गुप्त सामग्री उसका छिपा हुआ असली मतलब जो अक्सर कोई दबी हुई इच्छा होती है।
और ये बदलता कैसे है गुप्त से प्रकट?
उसके लिए फ्रॉयड ने स्वप्न कार्य या ड्रीम वर्क की बात की। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा मन गुप्त इच्छाओं को छिपाकर बदलकर प्रकट सपने का रूप देता है।
लेकिन क्या स्टोर फ्रॉयड की इस बात से पूरी तरह सहमत है कि हर सपना इच्छा पूर्ति है और यही अचेतन का शाही रास्ता है?
स्टार मानती हैं कि सपनों को मनोवैज्ञानिक अहमियत देना ये फ्रॉयड का एक महत्वपूर्ण योगदान था। इससे पहले लोग सपनों को ऐसे नहीं देखते थे। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि शाही रास्ता कहना शायद थोड़ी अतिशोक्ति है, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहना है।
अच्छा,
और आज की जो नींद पर रिसर्च हुई है, स्लीप साइंस, उसने भी फ्रॉयड के कई तरीकों पर इंटरप्रिटेशन पर सवाल उठाए हैं। तो यहाँ भी वही बात, स्टोर महत्व स्वीकारती हैं पर फ्रॉयड के दावों की सीमाओं को भी दिखाती हैं।
अब बात करते हैं मनोविश्लेषण की, एक थेरेपी के रूप में। टॉकिंग क्यूर का आइडिया तो बहुत प्रभावशाली रहा है, स्टोर एक प्रैक्टिशनर के तौर पर इसे कैसे देखती हैं?
स्टोर बताती हैं कि मनोविश्लेषण का लक्ष्य क्या है, दबी हुई अचेतन चीजों को होश में लाना, कॉन्शियस बनाना, ताकि इंसान उन्हें समझ सके, उन पर काम कर सके।
और तरीके क्या थे?
मुख्य तकनीकें थीं मुक्त सहचर्य, फ्री एसोसिएशन, मतलब बिना किसी रोक टोक के मन में जो भी आए वो कहते जाना, और दूसरा स्थानांतरण, ट्रांसफरेंस।
ट्रांसफरेंस ये क्या होता है?
ट्रांसफरेंस में मरीज अनजाने में अपने अतीत के जो महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, जैसे माँ बाप के साथ, उनकी भावनाओं को थेरेपिस्ट पर डालने लगता है। फ्रॉयड मानते थे कि इसी ट्रांसफरेंस को समझना और उस पर काम करना इलाज का सबसे जरूरी हिस्सा है।
और स्टोर का इस पर क्या कहना है, क्या ये तकनीकें वाकई काम करती हैं?
स्टोर, क्योंकि वो खुद एक थेरेपिस्ट थी, वो इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि पाने, थेरेपिस्ट मरीज के रिश्ते के महत्व को और अतीत के संघर्षों पर काम करने की जरूरत को मानती हैं। ये सिद्धांत तो आज भी कई तरह की थेरेपी का आधार है। लेकिन वो क्लासिकल मनोविश्लेषण की जो लंबी अवधि होती थी और उसकी सफलता को निष्पक्ष रूप से साबित करने में जो मुश्किलें आती हैं, उस पर भी सवाल उठाती हैं। मतलब टॉकिंग क्योर का जो मूल सिद्धांत है वो मूल्यवान है, पर फ्रॉयड का जो खास तरीका था वो शायद उतना यूनिवर्सल या हमेशा कारगर न हो।
अच्छा, अपने बाद के सालों में फ्रॉयड सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं, समाज और संस्कृति पर भी लिखने लगे थे, जैसे उनकी वो किताब है सभ्यता और उसके असंतोष। स्टोर इन विचारों के बारे में क्या कहते हैं?
हाँ, बाद में फ्रॉयड एक तरह से फिलोसोफर और सोशल थियोरिस्ट बन गए। उन्होंने एरोस यानी जीवन वृत्ति, जिसमें प्यार, रचनात्मकता, खुद को बचाए रखना आता है, और थानाटोस यानी मृत्यु वृत्ति, जो विनाश, आक्रामकता की तरफ ले जाती है, की बात की।
एरोस और थानाटोस।
हाँ, और उनका मुख्य तर्क ये था कि सभ्यता, सिविलाइजेशन, एक जरूरी बुराई है। ये हमें प्रकृति के खतरों से और एक दूसरे से बचाती है, लेकिन इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है।
क्या कीमत?
हमें अपनी सहज इच्छाओं को, खासकर सेक्स और आक्रामकता को दबाना पड़ता है, और इसी वजह से सभ्य इंसान हमेशा एक तरह के असंतोष, एक डिस्कंटेंट में जीता है। हमारा सुपर ईगो हमें लगातार अपराध बोध महसूस कराता रहता है।
ये तो काफी निराशावादी सा लगता है, स्टोर इसे कैसे आंकती हैं?
स्टोर मानती हैं कि ये विचार बहुत ज्यादा अटकलबाजी पर आधारित है, मतलब स्पेक्युलेटिव है, इनका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी ये व्यक्तिगत इच्छाओं और समाज की जरूरतों के बीच जो एक तनाव हमेशा रहता है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ भी महत्व को पहचानती हैं, पर वैज्ञानिक आधार की कमी को भी नोट करती हैं।
तो इतने सारे विचारों का ये जो विश्लेषण स्टोर ने किया है, उसके बाद उनके मुताबिक फ्रॉयड के कौन से मुख्य संदेश हैं जो आज भी मायने रखते हैं, क्या निचोड़ निकलता है?
हाँ, कुछ बातें हैं जो बहुत बुनियादी हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा, अचेतन प्रक्रियाओं की हकीकत। ये मानना कि हम हमेशा अपने विचारों और कामों के पूरे कंट्रोल में नहीं होते, अनदेखी ताकतें, दबी हुई इच्छाएं हमें प्रभावित करती हैं, ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी थी।
हाँ, ये तो है।
और दूसरा?
दूसरा?
बचपन के रिश्तों का गहरा महत्व। हमारे शुरुआती अनुभव, खासकर परिवार के साथ, वो हमारी बाद की जिंदगी के इमोशनल पैटर्न को बनाते हैं। फ्रॉयड के वो खास साइकोसेक्सुअल चरण भले ही आज विवादित हों, पर ये जो मूल आइडिया है, ये आज भी मनोविज्ञान का एक अहम हिस्सा है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मैटर।
बिल्कुल। तीसरा क्या होगा?
तीसरा, इंसानी प्रेरणा की जटिलता। हमारा जो व्यवहार है उसके पीछे अक्सर एक नहीं कई कारण होते हैं, और जो कारण हम दुनिया को बताते हैं या खुद को बताते हैं वो असली कारणों से अलग हो सकते हैं। फ्राइड ने हमें सिखाया कि इंसान सीधा सरल नहीं है, बल्कि बहुत पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है।
और चौथा?
चौथा, बातचीत और समझ का उपचारात्मक महत्व। अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को शब्दों में ढालना और अपने पैटर्न को समझना, ये अपने आप में ही हीलिंग हो सकता है। यही टॉकिंग क्योर का आधार है, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। हम महसूस भी करते हैं ना, किसी से मन की बात कह देने से कितना हल्का लगता है।
हाँ बिल्कुल, ये तो है मुख्य बातें।
हाँ, पर स्टोर हमें दो चेतावनियां भी देती हैं जो फ्राइड के काम से सीखने लायक हैं। एक तो सिद्धांत गढ़ने में अति उत्साह का खतरा। फ्राइड ने कई बार कम सबूतों पर बहुत बड़े बड़े सिद्धांत बना दिए, जिससे उनके मूल विचारों को ही नुकसान हुआ।
अच्छा।
फ्रॉयड के विचार उनके समय और वियना के समाज से बहुत प्रभावित थे। यह हमें सिखाता है कि किसी भी विचार को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना कितना जरूरी है, उसे यूनिवर्सल मान लेने से पहले।
सही बात है। फ्रॉयड की कुछ कथन तो इतने मशहूर हैं कि मुहावरे जैसे बन गए। स्टोर इनके बारे में क्या कहते हैं? जैसे वो वाला, जहाँ इड था वहाँ ईगो होगा।
Where it was, there ego shall be।
हाँ, स्टोर इसे थेरेपी के लक्ष्य के रूप में देखती हैं। मतलब अचेतन आवेगों इड पर सचेत नियंत्रण ईगो पाना, सेल्फ अवेयरनेस के जरिए ज्यादा आजादी हासिल करना, ये फ्रॉयड के काम का एक उम्मीद जगाने वाला पहलू है।
और वो सपनों वाला कथन, सपनों की व्याख्या अचेतन तक पहुंचने का शाही रास्ता है।
ये दिखाता है कि फ्रॉयड सपनों को कितना ज्यादा अहम मानते थे। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, स्टोर इसे फ्रॉयड की थोड़ी अतिशोक्ति वाली प्रवृत्ति का उदाहरण भी मानती हैं। सपने महत्वपूर्ण हैं, पर शायद इकलौता शाही रास्ता कहना थोड़ा ज्यादा है। और एक वो मजाकियों सी बात जो अक्सर फ्राइड से जोड़ी जाती है, हालांकि शायद उन्होंने कही नहीं थी, कभी कभी सिगार सिर्फ एक सिगार होता है।
हाँ, ये शायद उन्होंने कहा नहीं, पर ये एक तरह का सिंबल बन गया है। स्टॉक के विश्लेषण के संदर्भ में देखें तो ये याद दिलाता है कि हर चीज का गहरा सिंबॉलिक मतलब निकालना, खासकर सेक्सुअल मतलब, जरूरी नहीं है। कभी कभी चीजें बस वही होती हैं जो दिखती हैं। बैलेंस जरूरी है।
और उनके संस्कृति वाले लेखन से, सभ्यता वृत्ति के त्याग पर बनी है।
ये व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक व्यवस्था के बीच जो एक कभी ना खत्म होने वाला तनाव है, उसे दिखाता है। सभ्य होने के लिए हमें अपनी आदिम इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ता है और उसकी एक मनोवैज्ञानिक कीमत चुकानी पड़ती है। स्टॉ इसे फ्रॉयड का एक महत्वपूर्ण, हालांकि थोड़ा निराशावादी अवलोकन मानती हैं।
तो ये सब तो बड़े गहरे विचार हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब है? क्या हम इन आइडियाज को किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, मुझे लगता है कई तरीकों से। सबसे पहले तो खुद को बेहतर समझने में, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को पहचानना। जैसे जब हम अपनी गलती मानने की बजाय बहाने बनाते हैं, रैशनलाइजेशन, या अपनी कोई कमी हमें दूसरों में दिखने लगती है, प्रोजेक्शन। अगर हम इन्हें पहचान पाएं तो शायद हम खुद के प्रति ज्यादा ईमानदार हो सकते हैं।
ये तो है। और
पालन पोषण में भी ये समझ काम आ सकती है, ये जानना कि बचपन के अनुभव क्यों इतने मायने रखते हैं, या कैसे हमारा अपना अतीत, हमारे अपने बचपन के अनुभव, हमारे बच्चों के साथ हमारे व्यवहार को अनजाने में प्रभावित कर सकते हैं। वो ट्रांसफेरेंस वाली बात, जैसे अगर हम बच्चे की किसी छोटी सी बात पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तो रुककर सोचना कि कहीं ये गुस्सा किसी और पुरानी बात से तो नहीं जुड़ा।
हाँ, ये मुमकिन है। और काम की जगह पर?
बिल्कुल। कामकाजी रिश्तों में भी कभी कभी किसी सहकर्मी या बॉस के प्रति हमारी जो बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होती है, एकदम इरैशनल लगती है। हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि वो हमें अनजाने में हमारे अतीत के किसी व्यक्ति की याद दिला रहे हों। इसे समझने से हम शायद ज्यादा संतुलित तरीके से रिएक्ट कर पाए। और जो लोग हेल्पिंग प्रोफेशन में है, डॉक्टर, टीचर, काउंसलर, सोशल वर्कर,
उनके लिए समझना कि एक मददगार रिश्ता सिर्फ सलाह देना नहीं होता बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव बनाना भी होता है, ये बहुत कीमती है। और ये भी समझना कि लोग बदलाव का विरोध क्यों करते हैं तब भी जब वो कहते हैं कि वो बदलाव चाहते हैं।
बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात जो स्टॉर का तरीका सिखाता है वो है आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग।
हाँ, किसी भी विचार को लेते समय उसकी खूबियों और खामियों दोनों को देखना, वैल्यूएबल इनसाइट्स को बिना आधार के दावों से अलग करना, ये सिर्फ फ्रॉइड के लिए नहीं, आज की इस इन्फॉर्मेशन से भरी दुनिया में किसी भी जानकारी को, किसी भी विचार को समझने के लिए बहुत जरूरी स्किल है।
तो कुल मिलाकर एंथनी स्टॉर के जरिए फ्रॉइड को देखने से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जो प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद विचारक होते हैं उनको समझने के लिए एक संतुलित नजरिया रखना कितना जरूरी है। फ्रॉइड के कई खास सिद्धांत भले ही आज वैज्ञानिक कसौटी पर खरे ना उतरें, लेकिन उनकी जो मूल अंतर्दृष्टि थी कि इंसान सतह से कहीं ज्यादा जटिल है, कि अचेतन प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कि बचपन का गहरा असर होता है और कि हमारी प्रेरणाएं बहुत उलझी हुई होती हैं, ये बातें आज भी मौलिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
बिल्कुल। स्टोर हमें यही दिखाती हैं कि मनोवैज्ञानिक समझ, साइकोलॉजिकल इनसाइट मूल्यवान हो सकती है भले ही उसे एकदम सटीक तरीके से नापना या साबित करना मुश्किल हो। आत्मधोखे की हमारी क्षमता, शुरुआती रिश्तों का महत्व, अपनी बात कहने और समझे जाने की जो हीलिंग पावर है, ये फ्रॉइड की स्थायी देन है जिन्हें स्टोर ने बड़ी खूबी से हमारे सामने रखा है।
हाँ।
शायद स्टोर का सबसे बड़ा योगदान यही दिखाना है कि किसी जटिल विचार को पूरी तरह समझने के लिए उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को एक साथ देखना जरूरी है। ये सिर्फ फ्राइड के लिए नहीं, किसी भी बड़े विचारक या किसी भी जटिल विचार प्रणाली को समझने का एक परिपक्व, एक मैच्योर तरीका है।
फ्राइड को पूरी तरह खारिज कर देना या उन्हें पूजने लगना, दोनों ही आसान रास्ते हैं।
हाँ, स्टोर हमें वो मुश्किल लेकिन ज्यादा उपयोगी रास्ता दिखाते हैं।
एक सवाल जो शायद श्रोताओं के मन में भी उठेगा, हमारे आज के विचारों और व्यवहार में जाने अनजाने फ्राइड का कितना असर बाकी है, भले हम उनका नाम न लें या उनके सिद्धांतों को ना माने।
ये सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।